एक तो वो लोग होते हैं जो अपने जीवन का आगे पीछे लक्ष्य बना लेते हैं सेवा परमपिता परमात्मा के, उन्हें और किसी से मतलब नहीं। इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है और ज़्यादातर वही आत्माएं होती हैं जिनकी पिछले जन्म की कमाई में कुछ रह गया होता है, वो ईश्वर दया करके उनको कंप्लीट करता है। ऐसे ही लोगों से ईश्वर अपना काम भी कराते हैं। एक दुनिया की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, जब इच्छा पूरी हो जाती है खुश हो जाते हैं, नहीं होती दुखी होती हैं, उनका जीवन भर इसी सुख दुख के चक्कर में, और उससे निकल के दलदल में फंस जाते हैं। ईश्वर का नाम का कोई इनकी प्रकृति होती है, ये कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में इस बुरी तरह फंसते हैं कि उससे ऊपर निकलने की कोशिश। एक तीसरी श्रेणी के होते हैं जिनको कभी ईश्वर की याद आ गई, दुनिया काम दुनिया ही के लिए, लेकिन याद ईश्वर को भी करते रहते हैं। ये उनसे बेहतर हैं और इनके चांसेस, एक होते हैं कि जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, खाए पिए जानवरों की तरह पड़े रहे, इनके साथ मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। दूसरी श्रेणी के भी साथ मेहनत करने से ज़्यादा फायदा नहीं होता, तो सब कुछ होते हुए उनकी लिमिट वही इच्छाओं तक आके सीमित हो जाती है। आज एक इच्छा हुई, कल दूसरी इच्छा हुई, और उनकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती यहाँ तक कि वो ख़त्म हो जाते हैं। ये तीसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं, जो ईश्वर को भी याद करते रहते हैं और दुनियाओं को, यही आगे पीछे चल के, जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को रिफ्यूज़ नहीं करते एडमिशन के, इसी तरह परमार्थ में भी ईश्वर का नाम बताने के लिए किसी को मना नहीं करते। पता नहीं ईश्वर कब उस पर दया हो जाए, लेकिन पहली और तीसरी श्रेणी के लोगों के साथ ज़्यादा होना मिलना चाहिए और उन्हीं की संगत अख्तियार करनी चाहिए। और यही बाबूजी महाराज साहब ने और हमारे गुरुदेव ने किया। उनके साथ 55 साल का वो था, वो जाने ही नहीं देते थे कहीं, ताकि उस वातावरण का असर न पड़े। यानी किसी रिश्तेदार के यहाँ हम लोग नहीं जाते, बस उन्होंने कहा अरे ये बेचारे कहाँ जाएंगे। उन पर हर तरह के चार्जेस लगे कि साहब बच्चे बड़े वो उनके वो हैं, और जब हम लोग मेडिकल में आ गए तब तो कहने ही क्या, हमारी छोटी बहन के यहाँ के लोग बड़े दुनियादार थे, उनके ससुर की जीवित काल में हम लोग कभी नहीं गए। उनका अच्छा घर में किसी छोटे बच्चे को कोशिश ये करते थे कि ऐसे आदमी को जिसकी उम्र ऐसी हो जिस पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इतना कौन कर सकता। गुरुदेव हर वक्त हम लोग को साथ लिए फिरते थे, खाली इसीलिए ये इन वातावरणों से बचे रहे। तो सेक्रीफाइस किसकी है, उनकी ना कि हमारी, समझे। क्योंकि लाला जी महाराज साहब का इस दुनिया ही में रह के दुनिया को ख्याल से छोड़ना, इसी ख्याल से हम अटैच हैं इसी ख्याल से हम सुकून। ये अगर कोई चाहे कि दीन और दुनिया दोनों कमा ले, वो इम्पॉसिबल है। दीन के लिए आपको कमाना पड़ेगा, दुनिया आपके पिछले जन्म के उससे मिलेगी, और इसीलिए हर शख्स के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी अच्छे दिन हैं, कभी बुरे दिन हैं। बुरे दिन भी बराबर नहीं रहते किसी के। अगर ऐसा हो तो आदमी मनुष्य जीवन को कभी नहीं। तो ऐसे आदमी को तलाश करते रहिए कि जो दुनिया में रह के दुनिया काम करते हुए ईश्वर का नाम भी बराबर ले। उनके साथ रहने से धीरे धीरे उनके प्रभाव से आप पर भी यही असर आ जाए। ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आपकी उम्र क्या है, आप कितनी देर पूजा करते हैं, कितने आपने भंडारे सजाए, इस बात पे कि आपने कितने जल्दी उस असर को कबूल कर ली। भौजी महाराज साहब कहते थे कि बेटे एक शख्स है, वो दिया भी लाता है, बत्ती भी है, तेल भी है, दिया सलाई है, बस खाली उसे इग्नाइट करना होता है, रोशनी आ जाती है। एक शख्स ये है, जीवन पर कभी दिया सलाई लाया तो तेल नहीं लाया, तेल ला गया तो दिया नहीं आया। उनका इनमें बड़ा टाइम लगता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जैसा इसमें बताया, आज्ञा का पालन करना है। अगर आपने ये सोच, अच्छा ये आप कुछ मत पूछिए, लेकिन अगर ले तो उसका पालन करें, तो वो काम सहूलियत से। बाबूजी ने भी ललई जी महाराज साहब के लिए कार खरीदने की भी उनसे आज्ञा मांगी। जब उनने कहा नहीं जाके ले आओ, तब वो ले आई। अगर वो मना करते 100% नहीं लाते। इससे पहले भी ऐसे इत्तफाक हुए हैं जिनमें उनने कई चीज़ों उन्होंने कहा बेटे इससे रहने दो। फिर उन लोगों को फॉलो करना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए कि जो लोग इस रास्ते पर चल के मंजिल के नज़दीकी पाए। आपने बुलंदशहर में पोस्टेड थे, दिल्ली 7 दिन लगता था फतेहगढ़ से वो पहुंचने में। 30 मिनट तो उन्होंने कहा बेटे तुम्हारा पैसा भी ख़राब होता है, यहाँ आते आते ये सब सड़ जाते हैं, इसलिए कुछ मत भेजने की ज़रूरत, खाली ये संभव हो तो भेज दो, मनमते हो तो भेजते रहते सब ये। उनका आप हम गाय के दूध का सेवन करना चाहते हैं, यदि संभव हो तो एक गाय और एक आदमी, वो गाय जीवन भर उनके साथ। जब तक लाला जी महाराज साहब, तो केवल 2 चीज़ें हैं जिनके संबंध में हम लिख के दे सकते स्टाम्प पेपर पर, उन लोगों को धोखा नहीं है जो बेलौस सेवा करते हों और जो आज्ञाकारी हों। उसके अलावा कोई नहीं जानता ईश्वर किसकी गाड़ी कहाँ पर हो। इन दोनों व्यक्तियों में कोई धोखा नहीं है। बेलौस सेवा का मतलब जिसके बदले की कोई उम्मीद ना। इसी तरह केवल 2 चीज़ें ही आपको ये करनी होती हैं। ओम शब्द का हर वक्त जाप कर, केवल अपने गुरु का ख्याल करते रहे, वही आपको इस भवसागर से पार कर। अदरवाइज नॉर्मल आदमी के जिस वक्त सामने मौत खड़ी होती है, जो विचार होते हैं उसी के हिसाब से उसकी रीबर्थ होती है। देखिए उनकी आखिरी बात हिरण का ख्याल आ गया, हिरण की डेथ हो गई। जिधर ख्याल की धार जाएगी, इसी ख्याल को हर वक्त जब आप गुरु के चरणों में लगाए हुए हैं, और ओम शब्द का जाप कर रहे हैं, तो कोई धोखा नहीं है। चाहे आप खा रहे हैं तब आपको कोई मतलब नहीं है। इसी को हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटे खेल कूद बहुत हो गया, अब मौत की तैयारी करो, पता नहीं किस वक्त भी आ जाए। बाबू विदोहन लाल जी उसी को कहते थे कि ऐ आसमां वाले, अजब तेरा दस्तूर है, हर जमीन पर आने वाला मौत से मजबूर है। एक मौत ऐसी चीज है जिससे हर शख्स मजबूर है, मरना है ही सबको। तो नेचुरली जब मरना है हमें, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। तैयारी केवल यही है कि हमारा गुरु हमारे साथ है और उसका नाम साथ है। उसका नाम रूप दोनों साथ हैं, हमें कोई चिंता नहीं कि किसी वक्त भी मौत आ जाए। यही मौत की तैयारी होती है। बचे हुए हर चीज़ का बदला है। आपने अच्छे काम किए उसका ही बदला मिल जाएगा, ईश्वर का नाम लिया ईश्वर उसका ही बदला दे दीजिएगा। बदला हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटे लाला जी महाराज साहब के काल में हम इतने वो रहे कि दूसरों का हमें ध्यान ही नहीं आया। हाँ, बचे हुए सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जितने चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो उसकी ज़रूर रिस्पेक्ट करी, वास्ता किसी से। बची हुई जितनी ही पूजा है वो सब इंद्रियों और मन की है। इनसे इंद्रियां थोड़ी देर शांत हो सकती हैं, मन का वो हो सकता है, यहाँ तक बुद्धि का भी नहीं हो सकता। जैसा हम उसमें करेंगे, और ये हर शख्स 10 साल के ऊपर से कर सकता है, जिसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बचे हुए जब दुनिया ही में फंसना चाहते हैं उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। रिजल्ट सबके रोज हम और आप देख रहे हैं। हमें आपको तो ये 3 चीज़ें करनी है। हम लोग जो पढ़ते थे तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के थे, बस वो यही पूछते थे, हाँ डॉक्टर क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। उनका बेहोश पेशेंट आया है, क्या करोगे, किसी इनका सब ऑक्सीजन लगाएंगे और फेल करके चल देते थे, आगे और फेल करते। अगर किसी ने कहा बेहोश है, उसकी गर्दन एक तरफ को कर देंगे, सबसे पहले उल्टी होती है, और उल्टी फंस जाएगी और पड़ जाएगा। तो उनका कायदा ये था, व्हाट यू विल डू व्हाट यू विल नॉट डू। हाँ, बची हुई चीज़ अभ्यासी को कुछ भी नहीं करनी है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। इसी को बाबू जी कहते थे, बेटे जब दुनिया का सर्टिफिकेट मिलोगे वो देगी भी नहीं तुम्हें, जब उसने भगवान राम को सर्टिफिकेट नहीं दिया तो तुम्हें कैसे दे सकती है। और जब ईश्वर जो है वो दया करके दे सकता है, जब उसे याद ही नहीं करोगे तो तुम्हें क्यों देगा। तो न दीन के रहे न दुनिया के। ताऊ जी किताबें पढ़ लीजिए, उनने भी लिखा है कि हम तो आँख बंद करके लाला जी महाराज साहब के ख्याल में बैठ जाते थे, हमको नहीं मालूम। जब लोग बताते थे कि साहब, तो उनसे जानकारी मिल जाती। बाबू जी ने भी लिखा है, पूजा ही यही है। अगर आप अपने गुरु के ख्याल में नहीं हैं और कुछ करते हैं, तो उससे दूसरों को उतना फायदा नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। और ये फिर हमारा स्वभाव व्यवहार हो जाए, जैसे एक आदत पड़ गई हमारी सुबह उठ जाओ, तो इसी तरह ये हमारी आदत पड़ जानी चाहिए कि हर वक्त हम अपने गुरु के ख्याल में बने रहे और हर वक्त वो हमको जाना पड़ता है। बचे हुए अच्छे काम हैं जिनका बदला अच्छा मिल सकता है। ईश्वर तभी मिल सकता है जबकि हर वक्त अपने साथ नर रूप हरि को आप रखते। हर वक्त इसलिए कि ना वो मौत की कोई जानकारी है किसी को, न उसका कोई समय है कि किस वक्त आ जाए।